कहाँ मोरा भट जोग कहाँ कविराज एक काल को था गेला गोरा नटराज पाषाण कोटि बो माथा अनाले पसेब गोरांग गुणेरा निधे कोता गेले पाब से सब संगीरा संगे जे कैलो बिलास से संग न पाइया कांदे नरोतम दास जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर नेतै गौर हरि बोल शिलेश्वरपुरी तुरभावती महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की। तो भजन के शब्द इस प्रकार हैं, जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जो प्रेम धन लेकर के आए, कहाँ से लाए? गोलोक धाम से। क्यों लाए? करुणा प्रचुर, प्रचुर करुणा के कारण लाए। हेना प्रभु को था गेला ईश्वरपुरी ठाकुर, तो वो ईश्वरपुरी ठाकुर कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर हैं और कहाँ रूप गोस्वामी हैं, कहाँ सनातन, कहाँ सनातन गोस्वामी हैं, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं, कहाँ मोरा भट्ट जोग, भट्ट जोग गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ हैं, कहाँ कविराज, कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ है? एक काले को था गेला गोरा नटराज, और एक काले यानी अनायास कहाँ चले गए? गोरा नटराज जो गौर वर्ण के नर्तकों के राजा हैं, भगवान चैतन्य। पाषाणे कुटेबो माथा, मैं अपने माथे को पत्थर में फोड़ूं अथवा अनले पसीबो अथवा अग्नि में प्रवेश करूं, गौरांगा गुणेरा निधि को था गेले पाबो, गुणों के जो समुद्र हैं उन गौरांग को मैं किस प्रकार प्राप्त करूं? से सब संगीरा संगे जे कई लो बिलास, जितने संगी थे भगवान के साथ उन्होंने लीला विलास किया। से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास रो रहे हैं। तो ईश्वरपुरी का जो आज तिरुभाव दिवस है, तो इस उपलक्ष में हम सुनेंगे उनके विषय में। तो उनका वर्णन चैतन्य भागवत के आदि खंड के 7वें अध्याय में भी आता है और 12वें अध्याय में भी आता है। तो जितना समय होगा हम उनके विषय में सुनेंगे। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने कि ये घटना उस समय की है जब श्री चैतन्य विद्या अध्ययन कराते थे, अध्यापक थे। क्या सिखाते थे? व्याकरण, व्याकरण के शिक्षक थे, है ना। अभी भगवान ने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ नहीं किया, और जो नवद्वीप में वैष्णव थे तो वे बड़े दुख पाते थे, क्योंकि पाखंडी लोग जो है बड़े कटु वचन बोलते थे, उनके कीर्तन की निंदा करते थे, वैष्णवों की निंदा करते थे। और चैतन्य महाप्रभु अभी संकीर्तन को जो है प्रारंभ नहीं कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? विद्या रस का आनंद ले रहे हैं, विद्या रस का आनंद ले रहे हैं। जो विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा देते हैं, संस्कृत व्याकरण की शिक्षा देते हैं, है ना। तो वो जो विद्यार्थी थे वो कितने भाग्यशाली थे जिनको भगवान चैतन्य शिक्षा दे रहे थे। और वे विद्यार्थी इतने जुड़े हुए थे श्री चैतन्य से। इस समय श्री चैतन्य भी नहीं कहलाते हैं, निमाई पंडित कहलाते हैं, निमाई पंडित। तो निमाई पंडित से इतने जुड़े हुए थे कि जब वो जाते थे विद्यालय में तो उनके साथ ही जाते थे, और जब वो विद्यालय से वापस आते थे तो उनके साथ आते थे। तो उनका संग निमाई पंडित का जो है संग करते थे, तो साक्षात कृष्ण का संग करते वो विद्यार्थी कितने सौभाग्यशाली थे। तो इस समय ईश्वरपुरी नवद्वीप में आए। ईश्वरपुरी सन्यासी हैं, और सन्यासी जो है भ्रमण करता है ना। तो ईश्वरपुरी जी अति गुप्त वेश धारण करके नवद्वीप में पहुंचे। तो उनका गुप्त वेश, यहां गुप्त वेश का मतलब यह है कि वे जो सन्यासी थे तो उससे वैष्णव का पता नहीं चलता था कि वैष्णव है। अभी तो क्या है कि वैष्णव सन्यासी का जो है कुछ विशेष लक्षण है, कुछ चिन्ह होता है, वो क्या है? त्रिदंड, त्रिदंडी सन्यासी, है ना। तो वैष्णव सन्यासी है ना, और शिखा भी धारण करते हैं, तिलक धारण करते हैं, सूत्र धारण करते हैं। लेकिन जो मायावादी सन्यासी हैं वो एकदंडी सन्यासी होते हैं, शिखा सूत्र नहीं धारण करते हैं, है ना। तो इनका जो वेश था तो उससे पता नहीं चलता था कि ये ज्ञान योग साधक हैं या भक्ति के साधक हैं, यानी वैष्णव सन्यासी हैं या मायावादी सन्यासी, ये पता नहीं चलता था, है ना। तो इनका जो उनकी वेशभूषा थी वो मायावादी सन्यासियों की जैसी थी। और कृष्ण के रस में परम बेहबर रहते हैं। कृष्ण के एकांत प्रिय भक्त हैं। इस वेश में उन्हें कोई पहचान नहीं पाया, कोई नहीं पहचान पाया। नवद्वीप में वैष्णव तो हैं बहुत से, लेकिन वैष्णव लोग नहीं पहचान पाए, है ना। क्योंकि जो मायावादी सन्यासी हैं तो वे तो अपने को नारायण समझते हैं, तो ये तो बहुत अपराध है, है ना। मायावादी कृष्ण अपराधी, तो जो वैष्णव नवद्वीप के जो वैष्णव हैं वो कैसे पहचानेंगे, तो फिर कैसे सम्मान करेंगे उनका। और ये भ्रमण करते हुए दैव योग से अद्वैत प्रभु के घर में आ गए। ये दैव योग, इसे दैव योग बोलते हैं, कि जब आपको कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है और अनायास कुछ ऐसा हो जाए जो बहुत अनुकूल हो, भक्ति के बहुत अनुकूल घटना हो जाए कोई, तो उसे दैव योग बोलते हैं, या हम लोग बोलते हैं कृष्ण की कृपा, कृष्ण की कृपा से, है ना। सामान्य लोग बोलते हैं दैव योग, है ना। तो दैव योग से कहाँ गए? अद्वैत आचार्य के घर। इनको भी पता नहीं था कि यहाँ पर कौन रहते हैं? अद्वैताचार्य महान भागवत है? वो रहते हैं, है ना। और अद्वैताचार्य को ही पता नहीं है कि कौन महान पुरुष उनके घर में आने वाले हैं, और दोनों क्या हैं? वैष्णव हैं, दोनों परम वैष्णव, महावैष्णव दोनों। तो दोनों महावैष्णवों का मिलन हुआ है। उस समय तो मोबाइल नहीं था, है ना, मीडिया नहीं थी, है ना, कि भाई पता चले, पता लगाएं कि भाई नवद्वीप में कौन बहुत बड़े वैष्णव हैं, उनके घर में मैं ठहरूं, है। आज समय तो सब कुछ साधन होते हैं पता लगाने के, है ना। उस समय तो कोई भी उपाय नहीं था पता लगाने का कि कौन घर किसका है, है, और वो कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ईश्वरपुरी चूंकि भगवान के पूर्ण समर्पित थे, तो उनकी जो चाल थी वो भी भगवान के द्वारा ही नियंत्रित हो रही थी। उन्हें भी पता नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो कृष्ण के प्रेम में बेबल, तो उन्हें खुद ही होश नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। और कहाँ पर आ गए? अद्वैताचार्य घर में आ गए, घर के अंदर आ गए, है ना। घर ऐसा खुला था कि खटखटाने की भी आवश्यकता नहीं थी, दरवाजा खटखटाने की भी आवश्यकता नहीं, घर खुला हुआ था, है ना। तो पहले लोगों के घर खुले रहते थे, ऐसे सब नहीं होते थे जैसे आजकल बंद रहते हैं, कुत्तों से सावधान, है। आजकल जैसे घर होते हैं वैसे घर उस समय नहीं थे। तो ये अंदर तक पहुंच गए। जब अंदर पहुंच गए तो अद्वैत प्रभु क्या कर रहे थे? सेवा पूजा कर रहे थे, अर्ज विग्रह की पूजा कर रहे थे। अब अर्ज विग्रह की पूजा कर रहे हैं तो ईश्वरपुरी चूंकि बहुत विनम्र हैं, है ना, यद्यपि ये कहा गया है कि कोई वैष्णव अगर आए और आप पूजा कर रहे हैं भगवान की, तो भगवान की पूजा छोड़ करके उस वैष्णव की देखभाल करिए, उसका स्वागत करिए, सम्मान करिए, उसकी देखभाल सब मतलब आवश्यकताएं पूरी करिए, तब फिर भगवान की पूजा करो। भगवान की पूजा छोड़ करके भी आप करो वैष्णव का। लेकिन ये अपने को वैष्णव नहीं मानते हैं, वैष्णव जो है अपने को वैष्णव मानता नहीं है, अपने को तो बड़ा नीच मानता है। तो ये जो है बड़े संकुचित भाव से अद्वैताचार्य की पूजा को देख करके ये सोचने लगे कि मैं यहाँ पर अशांति पैदा करने आ गया, अपने को अपनी एक प्रकार से निंदा करने लगे, अपने मन में अपनी ही निंदा करने लगे, संकुचित होकर के बैठ गए, पूजा देख रहे हैं और बैठ गए कि मैं जो है बड़ा क्षुद्र हूँ, तुच्छ हूँ, और ये जो वैष्णव है ये भगवान की पूजा कर रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल बिना किसी बाधा डाले, कोई बाधा ना पैदा हो, उनकी पूजा में कोई बाधा पैदा ना हो। अगर उनको पता भी चलेगा तो वो पीछे मुड़ के देखेंगे तो पूजा में बाधा पड़ेगी। तो वो यही सोच रहे हैं, ये ईश्वरपुरी क्या सोच रहे हैं कि ये मुझे ना देखें और पूजा में लगे रहें, ये भाव तो ईश्वरपुरी का ये भाव है ना। लेकिन अद्वैत बार बार उनकी तरफ देख रहे हैं। अब पूजा तो कर रहे हैं अद्वैताचार्य, है ना, लेकिन अद्वैत बार बार उनकी तरफ देख रहे हैं, है? तो पूजा का नियम है कि बात नहीं करना चाहिए, और वो ईश्वरपुरी भी नहीं चाहते हैं कि अद्वैताचार्य अपनी पूजा बंद करें। तो पूजा तो बंद नहीं कर रहे हैं अद्वैताचार्य, लेकिन बार बार किसको देख रहे हैं? ईश्वरपुरी की तरफ देख रहे हैं, है ना। जेखाने अद्वैत सेवा करे न बसिया, सम्मुखे बसीला बड़े संकुचित हैया, वैष्णवीर तेज वैष्णवीर न लोकाय, पुनः पुनः अद्वैत तहार पानी चाहे। तो यहां समझने वाली बात है कि वैष्णव का तेज वैष्णव से छिपता नहीं है, तो अपने तेज को छिपाए हुए हैं, इनकी वेशभूषा से कुछ भी पता नहीं चलता, कोई नहीं पहचान पाता। अद्वैताचार्य महावैष्णव है, तो उनको जो है वैष्णव का तेज नहीं छिपना है, इसलिए पूजा मैं भी जो है उनका जो ध्यान है वो ईश्वरपुरी की तरफ जा रहा है, तो उसमें कोई अपराध नहीं है, क्योंकि भगवान की पूजा करते समय अगर भक्ति की तरफ कोई व्यक्ति ध्यान दे, भक्त का चिंतन करे, तो उसमें कोई दोष नहीं होता है। तो अद्वैताचार्य बार बार ईश्वरपुरी की तरफ देख रहे हैं और पूजा अपनी कर रहे हैं ना। अब जब पूजा हो गई पूरी तो अद्वैताचार्य ने पूछा, पूछा, क्या हे महोदय आपका क्या परिचय है, मुझे ऐसा लगता है आप वैष्णव सन्यासी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप वैष्णव सन्यासी हैं। कैसे लगता है? आपके तेज को देख करके। और वो जो तेज है सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता है, एक वैष्णव ही देख सकता है वैष्णव के तेज को, है ना। तो अद्वैताचार्य कह रहे हैं मुझे लगता है कि आप कृष्णोपासक सन्यासी हैं, है ना। तो ईश्वरपुरी ने कहा, क्या कहा, मैं एक क्षुद्र अधम जीव हूं, मैं एक क्षुद्र अधम जीव हूं, है ना। तो जो महान वैष्णव है अपना परिचय कैसे देते हैं, क्षुद्र अधम जीव, है ना। उत्तम अधिकारी, उत्तम अधिकारी अपने को वैष्णव नहीं समझते, लेकिन मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी अगर वो भी अगर प्रचार करता है तो मध्यम अधिकारी के धरातल पर आता है और अपना परिचय देता है कि मैं प्रचार करने आया हूँ। जैसे प्रभुपाद है ना, विदेशों में गए तो अपना परिचय ऐसे थोड़ी दे रहे थे कि मैं क्षुद्र अधम जीव हूँ। प्रभुपाद तो दे रहे थे कि मैं यहाँ जो है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने आया हूँ, और तुम लोग कुत्ते और बिल्लियों जैसे जीवन जी रहे हो, मैं तुम लोगों को ज्ञान देने आया हूँ। तो मध्यम अधिकारी, तो उत्तम अधिकारी भी जो है, प्रभुपाद मध्यम अधिकारी नहीं, प्रभुपाद उत्तम अधिकारी, उत्तम अधिकारी को मध्यम अधिकारी के धरातल पर आना पड़ता है और अपना परिचय देना पड़ता है, कैसे शेर की तरह प्रचार करना है, और उनको नीचा दिखाना है कि तुम लोग कृष्ण का भजन नहीं करते, तुम लोग कितने नीच हो, तुम कितने निंदनीय हो, निंदा करता है। तो मध्यम अधिकारी निंदा करता है, भौतिकतावादियों की निंदा करता है, है ना। लेकिन उत्तम अधिकारी अगर प्रचार वो प्रचार नहीं कर सकता और प्रचार की आवश्यकता नहीं उत्तम अधिकारी के धरातल पर, तो वो अपना अपने को ही मानता है कि मैं ही बेकार हूं, बाकी सब भक्त हैं। तो ईश्वरपुरी उत्तम अधिकारी के धरातल पर हैं, तो अपना परिचय कैसे दे रहे हैं, मैं क्षुद्र अधम जीव हूं, है ना। लेकिन अगर आप इस तरह से प्रचार करेंगे, अपना परिचय देंगे किसी सामान्य व्यक्ति को, तो वो जो है मतलब और डांटेगा कि क्यों आए यहाँ पर, भागो यहाँ से, चलो भागो, क्यों आए, है ना। लेकिन अगर आप उसको परिचय देंगे कि मैं आपके लिए बड़ा ऊंचा संदेश लेके आया हूँ, इसको देखो, है ना, आपको जो है इससे लाभ होगा, आपके मन का तनाव दूर होगा, तो वो फिर मानेगा कि हाँ भाई कुछ यह आदमी कुछ काम का है, है ना। लेकिन अगर आप कहें मैं तो बेकार आदमी हूँ, आप वहाँ प्रचार करने जाएं कहें मैं तो बेकार आदमी हूँ, तो कहे निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से, तुम बेकार हो। अद्वैताचार्य हैं को जो है ईश्वरपुरी क्या कहते, मैं तो बेकार हूँ, है ना। लेकिन अद्वैताचार्य उनकी दृष्टि है ना गहरी, तो वो जानते हैं कि अपने को बेकार कह रहे हैं, लेकिन ये कितने कार हैं, है? कितने महान हैं, है ना। तो ईश्वरपुरी ने कहा, मैं क्षुद्र अधम जीव हूँ, आपके चरण दर्शन करने के लिए आया हूँ, आपके चरण दर्शन करने के लिए आया हूँ, है ना। तो ये जो है उत्तम अधिकारी के धरातल। लेकिन आप अगर कहीं जाएं ऐसे भौतिकतावादियों के सामने, कहें आपके चरण दर्शन करने आए हूँ, कहिए निकलो यहाँ से, भागो, चरण दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना। तो ऐसा नहीं है, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि बाहर आप जाते हैं तो शेर की तरह प्रचार करो, और मंदिर के अंदर भक्तों के पीछे मेमने की तरह रहो, है ना। तो ये तरीका है। लेकिन यहाँ पर वो ईश्वरपुरी हैं मेमने की तरह हैं, है ना, बिल्कुल डरे हुए हैं, मेरे से कोई अपराध ना हो जाए, मैं आपके चरण दर्शन करने के लिए आया हूँ, है, मैं तो क्षुद्र अधम जीव हूँ, है ना, आप महान वैष्णव हैं, ये भाव ईश्वरपुरी का है अद्वैताचार्य के प्रति। और अद्वैताचार्य भी माधवेन्द्रपुरी के शिष्य हैं, ईश्वरपुरी भी माधवेन्द्रपुरी के शिष्य हैं, तो दोनों ही गुरु भाई हैं। और ये जो योग है, उन दोनों मोबाइल नहीं होता था, मीडिया नहीं होता था, लेकिन भगवान फिर भी कराते थे योग, क्योंकि भगवान तो थे, तो भगवान से बढ़कर के मोबाइल, भगवान से बढ़कर के मीडिया और क्या हो सकता है। तो भगवान तो हृदय में है, तो जो पूर्ण समर्पित हैं तो उनकी प्रत्येक क्रिया जो है भगवान के द्वारा नियंत्रित होती है, है ना। तो ईश्वरपुरी ने कहा कि मैं आपके चरण दर्शन करने के लिए आया हूँ। अद्वैत बोले न बाप, तुम्हें कौन है जन, वैष्णव सन्यासी तुम हे न लय मन, बोले न ईश्वर है पूरी आमे क्षुद्र अधम, देखी मारे आई लाम तो मारे चरण। लेकिन यहाँ पर क्षुद्र अधम कहा है, लिखा है छपाई की गलती है, तो शूद्र अधम नहीं कह सकते। एक सन्यासी है अपने को शूद्र नहीं कह सकता कि सन्यासी वेश धारण की है, लेकिन शूद्र कह रहे तुच्छ हूं मैं, अधम हूं तुच्छ हूं, सन्यासी जरूर हूं लेकिन वास्तव में सन्यासी के योग्य नहीं हूं, मैं क्षुद्र अधम हूं, शूद्र तो नहीं कह सकते हैं। तो क्षुद्र अधम कहा ना। तो मुकुंद दत्त ने इन्हें वैष्णव सन्यासी जानकर श्री कृष्ण चरित्र का एक गीत बड़े प्रेम से गाया। तो अद्वैताचार्य ने इशारा किया होगा किसको, मुकुंद दत्त को। मुकुंद दत्त बैठे थे उनके पास में, और मुकुंद दत्त जो है कृष्ण के जो गीत गाते थे वो उनकी आवाज में बड़ी शक्ति थी, बहुत प्रेम का जो है भाव होता था मुकुंद दत्त, है ना। तो उन्होंने जो है ईश्वरपुरी की परीक्षा करने के लिए क्या किया, कृष्ण का एक गीत गाया, कृष्ण चरित्र का एक गीत बड़े प्रेम से गाया, और मुकुंद का गीत सुनते ही ईश्वरपुरी बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर गए। पता चल गया कि कितने ऊंचे हैं, कितने महान हैं। आपने को तो बता रहे हैं कि मैं क्षुद्र हूं, मैं अधम हूं, है ना, लेकिन आपने को छिपा नहीं पाए, है ना। बेसुध होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े, है ना, पता चल गया कि आप अपने को समझते तो हो कि बहुत तुच्छ हैं, आप कितने महान हैं, है ना। तो मुकुंद ने जो है इनका सब भंडाफोड़ कर दिया, है ना, मतलब इनके इनका जो है असली जो रूप है वो प्रकट कर दिया। नेत्रों से लगातार अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और बार बार सावन की वर्षा की भांति प्रेमाश्रुधारा बढ़ने लगी। जैसे जैसे अद्वैत ने इन्हें उठाकर गोद में ले लिया, जमीन में ऐसे लौट रहे हैं बेसुध हैं, तो अद्वैताचार्य ने इनको गोद में ले लिया, है ना, और उनका भी शरीर प्रेम जल से भीग गया। अद्वैताचार्य भी जो है रो रहे हैं, ईश्वरपुरी भी रो रहे हैं, है ना। प्रेम बढ़ता ही बढ़ता जा रहा था और संवरण नहीं हो पा रहा था। आनंद पूर्वक श्री मुकुंद उच्च स्वर से श्लोक पढ़ने लगे। जय मात्र सो नीलेन मुकुंदे रह गीते पड़ीला ईश्वर पूरे ढली पृथ्वी ते नयने जले अंत नाहेकते नाहेक तहान पुनः पुनः बाढ़े प्रेम धारा रे पयान। सभी वैष्णवों ने श्री पुरी के इस प्रेम लक्षण को देखा, सबके मन में अतुल आनंद उदय हुआ है, क्योंकि नवदीप में वैष्णवों की बहुत कमी है, और कोई बाहरी व्यक्ति आए और वो वैष्णव हो तो इन वैष्णवों को कितना सुख होगा, कितना आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि पाखंडी और निंदक तो बहुत भरे हुए हैं नवदीप में, है ना। तो भक्तों को कितना आनंद होगा ऐसे महान भक्त को देख कर के। तो फिर सबको पता चला कि ईश्वरपुरी है, अरे ये तो ईश्वरपुरी है, नाम सुना था ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी, और फिर सन्यासी शिष्य ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी के शिष्य अद्वैताचार्य है लेकिन गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ का उतना सम्मान नहीं होता जितना सन्यासी का सम्मान है, तो ईश्वरपुरी के सन्यासी शिष्य, और फिर ईश्वरपुरी ने माधवेंद्रपुरी की आजीवन सेवा की, है ना, उनका जो है तिरोभाव पर्यंत सेवा की ईश्वरपुरी ने। माधवेंद्रपुरी की संगति कब तक की, जब तक माधवेंद्रपुरी ने अपना शरीर नहीं छोड़ दिया और अंतिम शब्द नहीं बोले, ईश्वरपुरी को अपने अंतिम शब्द बोले तो वो ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के कितने निकट के भक्त हैं, सबने नाम सुना था, आज पता चला कि कौन है ये वो हैं ईश्वरपुरी जिनका नाम सुना है कभी देखा नहीं सब वैष्णवों को। तो सभी इनका प्रेम देख करके हरि हरि स्मरण करने लगे कि क्या प्रेम है, माधवेंद्रपुरी की जो देन है ईश्वरपुरी को जो मिली है वो कैसा प्रेम है, सब लोग हरि हरि स्मरण करने लगे। देखिया वैष्णव सब प्रेमे रह विकार अतुल आनंद माने जन्मे ले सभार पाछे सब चिन्ही लेन श्री ईश्वर पुरी प्रेमे देखी सब स्मरे न हरि हरि। इस प्रकार ईश्वरपुरी अलक्षित रूप से नवदीप में विचरण करते रहे, अलक्षित रूप से कि बाहर निकलते हैं तो कोई नहीं जानता ही कि इनका क्या सम्मान है, इनकी क्या महिमा है, कोई नहीं जानता, क्योंकि अवैष्णव ज्यादा से ज्यादा तो वैष्णव नहीं है लोग निंदक है, पाखंडी है, अलक्षित रूप से विचरण करते रहे, कोई इन्हें पहचान नहीं सका। एक दिन महाप्रभु पढ़ाकर अपने घर लौट रहे थे। अब मिलन कैसे हुआ निमाई पंडित सेन का? तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान जो है पढ़ा करके लौट रहे हैं, तो पढ़ा करके लौट रहे हैं तो उनके साथ में उनके शिष्य भी हैं, और जो शिष्य हैं वो भगवान अपने शिष्यों को मित्र की तरह ही व्यवहार करते हैं, अपने बराबर। कोई बड़ा व्यक्ति अपने छोटे को जो है कभी अपने समान अगर व्यवहार करे तो उसका अधिकार है ना, तो अपने शिष्यों से जो है मित्रवत व्यवहार करते थे, तो शिष्यों से घिरे हुए घर लौट रहे हैं। और देव योग से रास्ते में इन्हें ईश्वरपुरी के दर्शन हुए, चैतन्य को ईश्वरपुरी के दर्शन हुए। प्रभु ने इन्हें अपना सेवक जान करके नमस्कार किया, अपना सेवक जाना, अंदर से तो अपना सेवक जाना लेकिन बाहर का जो भाव है वो क्या है कि मैं तो गृहस्थ हूँ और ये सन्यासी हैं, तो नमस्कार किया। क्योंकि भगवान तो शिष्टाचार धर्म की स्थापना करते हैं, है ना, धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, तो गृहस्थ का क्या धर्म है कि वो सन्यासी विरक्त का सम्मान करे, तो भगवान ने इनको सम्मान किया, नमस्कार किया। और श्री गौर सुंदर ने इन्हें अपने आप प्रणाम किया। श्री चैतन्य अनिर्वचनीय सुंदर रूपवान थे, अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, इतना सुंदरता भगवान की सुंदरता है, अनिर्वचनीय, वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ईश्वरपुरी ने क्या देखा, एक युवक, आप पहचान नहीं सकते ना जब तक भगवान ना जनाए, कौन भगवान को जान सकता है, लेकिन ईश्वरपुरी ने क्या देखा, अनिर्वचनीय सुंदर रूपवान, सब प्रकार से सर्व विलक्षण अलौकिक गुण, सब लोग इनको देख करके भयभीत होते थे, निमाई पंडित को देख करके भयभीत होते थे, जो घमंडी थे ना और बड़े अपने को विद्वान समझते थे तो इनको देख करके भयभीत होते थे, क्योंकि ये सरस्वती के पति हैं, जो भी बोलते हैं तो खंडन करने की शक्ति किसी के पास नहीं, और कोई कुछ भी बोले अगर ये खंडन करना चाहें तो फिर उसका मंडन कोई नहीं कर सकता, भगवान सरस्वती पति सब लोग डरते थे, निमाई पंडित सब लोग डरते थे, जो घमंडी हैं वो डरते हैं, है ना, तो सब लोग डरते हैं, लेकिन ईश्वरपुरी को इन्होंने प्रणाम किया, इन्होंने प्रणाम किया, क्यों, भक्त, अपना भक्त जान करके प्रणाम किया, सम्मान किया, है ना, तो भक्तों के लिए भगवान जो है क्या है, अभयंकर, अभय पैदा करते हैं, अभय देते हैं, और अभक्तों के लिए भयंकर, अभक्तों को भय पैदा करते हैं, तो नवद्वीप में जितने अभक्त हैं तो वो जो है भगवान को देख के भयभीत होते हैं, ईश्वरपुरी भक्त हैं तो भगवान स्वयं प्रणाम कर रहे हैं उनको, है ना, भगवान प्रणाम करे, है ना। तो अब ईश्वरपुरी ने इनकी ओर देखा तो लगा कोई सिद्ध पुरुष है, परम गंभीर सिद्ध पुरुष, ईश्वरपुरी ने देखा कि सिद्ध पुरुष यानी पूर्ण, सब प्रकार से पूर्ण है ये, ऐसा उनको लगा। अति अनिर्वचनीय ठाकुर है सुंदर, सर्व मते सर्व विलक्षण गुण धर्म, यद्यपि हो तान मर्म के हो नहीं जाने, तथापि साधु से कार्य देखी सर्व जने, चाहे न ईश्वर है पूरी प्रभु रे शरीर है, सिद्ध पुरुष रे प्राय परम है गंभीर है। तो जो सबसे पहला मिलन हुआ उस समय बात अभी कुछ नहीं हुई, केवल निमाई पंडित ने क्या किया, उनको नमस्कार किया, लेकिन अब बात कहां से शुरू हुई, ईश्वरपुरी के द्वारा। ईश्वरपुरी ने क्या, विप्रवर आपका क्या नाम है पूछा, आपका क्या नाम है, फिर क्या पुस्तक पढ़ाते हैं और पढ़ते हो, हाथ में पुस्तक है, हाथ में पुस्तक है तो समझ में आ गया कि कुछ पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, है ना, साथ में इनके साथी हैं, है ना, तो उनके साथ पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, विचार करते हैं, अध्ययन करते हैं, क्या पुस्तक पढ़ते और पढ़ाते हो, ये जो है ईश्वरपुरी ने पूछा, और आपका निवास स्थान कहाँ है, कहाँ पर रहते हो, तीन प्रश्न, कितने प्रश्न किए, तीन प्रश्न किए, पहला क्या नाम, क्या नाम, दूसरा क्या पढ़ते हो पढ़ाते हो, पढ़ते भी हो पढ़ाते भी हो, तो भगवान जो है मतलब केवल अध्यापक नहीं है बल्कि पढ़ते भी हैं, जैसे कि मॉनिटर होता है तो पढ़ता है और पढ़ाता है, तो इस प्रकार के भाव में भगवान जो है अपने शिष्यों को जो है शिक्षा देते हैं। और तीसरा प्रश्न क्या था, कहाँ रहते हो, है ना, तो निमाई पंडित कुछ नहीं बोले, शिष्यों ने कहा, वो साथी हैं उनके साथी मित्र जैसे, तो मित्रों ने कहा, मित्रों ने उत्तर दिया, है ना, क्या उत्तर दिया, इनका नाम है निमाई पंडित। भगवान कुछ नहीं बोले, जब साथ में है तो फिर वो बोलेंगे, उत्तर देंगे, अपना नाम बताने की क्या जरूरत है। तो भगवान जो है कुछ उत्तर नहीं देते हैं, साथियों ने कहा इनका नाम है निमाई पंडित। ओ ईश्वरपुरी, अच्छा आप ही हैं वो, नाम तो बहुत सुना था। घूमते रहते थे नवद्वीप में तो कोई जानता नहीं था, लेकिन ये सुनते रहते थे बातें, और सुनते रहते तो जितने विद्वान बड़े जो घमंडी लोग होते थे वो निमाई पंडित की चर्चा करते थे, निमाई पंडित की चर्चा करते थे, किस भाव से, डर डर करके, बहुत डरते हैं उनसे, है बातचीत करने में डरते हैं, है ना, तो निमाई पंडित की बहुत चर्चा सुनी थी, तो इससे पूरी कहते अच्छा आप वही हैं, नाम तो सुना था। और ईश्वरपुरी प्रभु को देख करके बड़े आनंदित हुए और प्रभु ने उन्हें भिक्षा का निमंत्रण दिया, भिक्षा भोजन नहीं, भिक्षा का निमंत्रण दिया, भिक्षा का मतलब रूखा सूखा कुछ देंगे, फिर खिलाएंगे तो बहुत बढ़िया स्वादिष्ट, लेकिन नाम क्या है, भिक्षा, भिक्षा के नाम पर आएंगे, अरे कहेंगे अच्छा स्वादिष्ट भोजन है हमारे घर में, तो नहीं आएंगे, निरक्त सन्यासी स्वादिष्ट भोजन के नाम पर नहीं आएंगे, स्वादिष्ट भोजन खिला दो वो अलग बात है, लेकिन अगर कहीं स्वादिष्ट भोजन बनाया है मैंने आपके लिए तो नहीं आएंगे, भिक्षा कुछ रूखा सूखा है मेरे घर में आइए। तो भिक्षा का निमंत्रण दिया, भिक्षा आज आपकी हमारे घर में, ये कहा भिक्षा ना, तो और अपने घर ले चले आओ, हमारे हमारे साथ आइए, तो साथ ही आ गए, तो इनका कुछ ऐसा लक्ष्य है ही नहीं कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, ऐसे घूम रहे हैं तो आ जाओ, ठीक है, तो उसी समय चल पड़े, है ना। और माता सची ने श्री कृष्ण को भोग अर्पण किया और ईश्वरपुरी ने प्रसाद ग्रहण किया और मंदिर में बैठ गए, मंदिर भगवान चैतन्य के घर में एक विष्णु मंदिर है ना, तो जहाँ विष्णु की पूजा होती है, विष्णु का अर्चन वगैरह, तो उस मंदिर में बैठ गए, ईश्वरपुरी जो है प्रसाद भोजन करके उस मंदिर में बैठ गए, फिर श्री कृष्ण कथा प्रसंग कहने लगे, और कृष्ण कथा कहते कहते बेबल हो गए कि प्रेम, इतना प्रेम है माधवीपुरी का प्रेम इनको विरासत में प्राप्त हुआ है, तो कृष्ण कथा कहते कहते बेबल हो गए और प्रेम सुधारा को देख करके भगवान अति संतुष्ट हुए, अंदर अंदर बड़े संतुष्ट हुए, लेकिन ऊपर से अपना वो भाव नहीं प्रकट किया जो उनके अंदर है, चैतन्य महाप्रभु में जो प्रेम है वो अभी प्रकट नहीं कर रहे हैं, अति संतुष्ट हुए, हाँ क्योंकि अभी समय नहीं आया है इसलिए अपने को प्रकाशित नहीं कर रहे हैं भगवान। कृष्ण नैवेद्य आई करी लेने गिया, भिक्षा करे विष्णु गृह बसीला आसिया, श्री कृष्ण प्रस्ताव तावे कही तेला गीला, कही ते कृष्ण रे कथा बेबल हईला, देखिया प्रेमे रे धारा पर संतोष, ना प्रकाश अपना लोके रे देने दोष। तो कई महीने तक ईश्वरपुरी रहे, कहा नवद्वीप में कई महीने तक रहे, लेकिन किसके घर में रहे, गोपीनाथ आचार्य, गोपीनाथ आचार्य के घर में रहे, वो बहुत बड़े वैष्णव हैं, है ना, और सारवम भट्टाचार्य के जीजा हैं, सारवम भट्टाचार्य जगन्नाथपुरी में रहते हैं और वो मायावादी हैं, लेकिन गोपीनाथ आचार्य जीजा हैं उनके, लेकिन बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनके घर में ईश्वरपुरी रहे और कई महीने तक रहे, और इनको देख करके सब वैष्णवों को बहुत आनंद होता है, एक सन्यासी वैष्णव सन्यासी, है ना, तो भक्तों को बहुत बल मिलता है ना, है ना, कि जितने हैं नवदीप के भक्त सब गृहस्थ हैं, है? और उनको जो है बल नहीं मिलता और पाखंडी लोग निंदा करते हैं, है ना, और कटु वचन बोलते हैं है? लेकिन एक सन्यासी एक वैष्णव ठहरे हुए हैं नवद्वीप में, तो सब वैष्णवों को बहुत आनंद होता है और महाप्रभु भी नित्य इनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। भगवान का भी रोज का नियम बन गया, क्या पढ़ाने के बाद गोपीनाथ आचार्य घर में जाएंगे इनके दर्शन करने के लिए, भगवान जाते हैं। और कथा प्रसंग में गदाधर पंडित के प्रेमाश्रों को देख करके सब वैष्णव उनसे बहुत प्रेम करते थे। गदाधर पंडित भी जाते थे इनके दर्शन करने। गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी। राधा रानी भी पुरुष रूप में है, है ना, क्योंकि भगवान आगे चल के संन्यास लेंगे तो भगवान का संग करने के लिए राधा रानी को भी पुरुष बनना पड़ा, नहीं तो स्त्री के रूप में भगवान तो सन्यासी स्वीकार ही नहीं करेंगे अपनी संगति, है ना। तो राधा रानी भी जो है गदाधर पंडित के रूप में है, तो ये भी जाते हैं ईश्वरपुरी के दर। सब वैष्णव जाते हैं गदाधर पंडित, लेकिन गदाधर पंडित का जो भाव है कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव, वो सब वैष्णवों को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय लगते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी जो है प्रेम के अश्रु बहते हैं जब ईश्वरपुरी कुछ कथा सुनाते हैं। तो इनका मन बालपन से संसार से बहुत विरक्त था, ईश्वरपुरी इनसे बहुत स्नेह करते थे, गदाधर से बहुत स्नेह करते थे, है ना। लेकिन नहीं जानते हैं राधा रानी है ये राधा रानी है, कोई नहीं जानता ना। गदाधर पंडित से अपनी रचित श्री कृष्ण लीलामृत पुस्तक पढ़वाया करते थे कि तुम पढ़ो हम लोग सुनेंगे। देखिए उन्होंने किताब किताब का नाम क्या है, श्री कृष्ण लीलामृत किताब लिखी है ईश्वरपुरी ने, है ना। लेकिन गदाधर पंडित से कहते हैं कि तुम पढ़ के सुनाओ, और खुद सुनते थे और जितने वैष्णव हैं सब सुनते हैं, महाप्रभु भी सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं, गदाधर पंडित जो है सुना दे। आगे चल के जगन्नाथपुरी में भगवान चैतन्य का नियम था, गदाधर पंडित से ही श्रीमद् भागवत सुनते थे, है ना। तो गदाधर पंडित से अपनी किताब पढ़वाया करते थे, है ना। और महाप्रभु संध्या के समय ईश्वरपुरी को नमस्कार करने के लिए जरूर जाएंगे अपने घर जाने के पहले। अब वो रास्ते में पढ़ता था या रास्ते में नहीं पढ़ता, जो भी हो पढ़ा करके अपने घर नहीं जाएंगे, पहले ईश्वरपुरी के दर्शन करेंगे उसके बाद फिर जाएंगे, है ना। और इनको देख करके ईश्वरपुरी बहुत प्रसन्न होते हैं, ना समझ पाए कि भगवान है, लेकिन भगवान तो आकर्षित करते हैं, है? भक्त ना भी समझ पाए भगवान को, तो भी भगवान भक्तों को आकर्षित करते हैं। तो ये नहीं जान सके कि इनके ही इष्ट देव हैं श्री कृष्ण है, ईश्वरपुरी नहीं जान सके, फिर भी इनसे बहुत प्रेम करते थे। गदाधर पंडितेर आपन आरे कृत पोथी पढ़ाए न नाम कृष्ण लीला मृत है, पढ़ाया पढ़िया ठाकुर संध्या काले ईश्वर पुरी रे नित्य नमस्कार चले, प्रभु देखे ईश्वर प्रभु देखे श्री ईश्वर पूरी हरे सित प्रभु हे न ना जाने न तब बड़ प्रीत है। तो एक दिन ईश्वरपुरी ने प्रभु से कहा, निमाई पंडित से कहा, क्योंकि निमाई पंडित का बहुत अधिकार है संस्कृत भाषा में, व्याकरण में, शब्दों की रचना में, शब्दों के प्रयोग में। तो ईश्वरपुरी जो है महाप्रभु से क्या बोले, क्या बोले, हे विश्वंभर, या तो निमाई पंडित या विश्वंभर, चैतन्य नहीं है नाम, संन्यास का नाम है चैतन्य, तभी संन्यासी नहीं है। हे विश्वंभर आप बहुत बड़े विद्वान हो, मैंने श्री कृष्ण चरित्र नामक पुस्तक जो लिखी है उसे देखकर तुम बोलो कि कहाँ क्या क्या दोष रह गया है, दोष बताओ इसके, है ना। किस प्रकार के दोष, शब्दों के प्रयोग में, है ना, कहीं जो क्रिया है वो कैसी है, उसका जो है वाक्य में कहाँ गलती है, तो उसका जो है दोष बताओ, इसका दोष बताओ, है ना। अभी आजकल तो क्या है कि कंप्यूटर में सब सुधार कर देते हैं फिर प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, अभी तो उस समय क्या है कि पोथी जो है मतलब लिखी उसकी कार्बन कॉपी भी नहीं होती थी, अब दोष बताने का मतलब उसी में ही काटा कुटी करना, है ना। तो ईश्वरपुरी को कोई चिंता नहीं है, जो उन्होंने लिखा है आप उसके दोष बताओ, उसे देखकर बोलो कहाँ कहाँ क्या क्या दोष रह गया है, इससे मुझे बहुत संतोष होगा। ईश्वरपुरी बोले मेरी संतुष्टि के लिए करो ये कार्य, तो भगवान नहीं चाहते, और भगवान तो बहुत दोष निकालते हैं किनके, घमंडियों के, जो घमंडी अपनी जो है कुछ रचना सुनाते हैं घमंड से, तो भगवान के हर शब्द में दोष निकालने वाले। लेकिन इनसे जो है भगवान नहीं चाहते हैं दोष निकालना, इनके दोष नहीं निकालना चाहते हैं। तो ईश्वरपुरी क्या कहते हैं, मुझे संतुष्टि होगी, मेरी संतुष्टि के लिए ये कार्य करो। ईश्वरपुरी कहते हैं मुझे बहुत संतोष होगा। महाप्रभु बोले नहीं नहीं, एक दो भक्त की वाणी है। भगवान क्या बोले, एक दो भक्त की वाणी है, फिर श्री कृष्ण का चरित्र है, जो इसमें दोष देखता है तो बड़ा पापी है। ये कहा दो कारण से, एक तो भक्त की वाणी तो दोष नहीं निकालना है, दूसरा कृष्ण का चरित्र है ना, तो फिर इसमें तो डबल पाप लगेगा, बड़ा पाप लगेगा। भक्ति ग्रंथ रचना जैसी भी क्यों ना हो, उसमें निश्चित रूप से श्री कृष्ण प्रेम करते हैं, है ना। जैसे श्रीमद् भागवत में बताया, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अपद्यवत्यपि, कि वो जो रचना है जिसमें चाहे अबद्ध हो यानी क्रमबद्ध ना हो, कुछ आगे की बात पीछे कर दी, पीछे की बात आगे कर दी, कुछ भी अबद्ध रचना है, अपद्यवत्यपि नामान आनंद से शोकितानियत, चूंकि उसमें अनंत भगवान के नाम है और यश अंकित नाम है, उनका यश गुणगान किया गया है, षडवंति गायंती गृणंति साधवा, तो साधु लोग जो है उनको सुनते हैं, उस वाणी को उसका गान करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो भगवान चैतन्य उसी दिशा में बोल रहे हैं ईश्वरपुरी से, तो क्या बोल रहे हैं कि भक्ति ग्रंथ रचना जैसी भी क्यों ना हो, उसमें निश्चित रूप से श्री कृष्ण प्रेम करते हैं। अब श्री कृष्ण स्वयं ही आप लोग छिपा रहे हैं, कहते हैं श्री कृष्ण प्रेम करते हैं तो मुझसे श्री कृष्ण नाराज हो जाएंगे। भगवान स्वयं कह रहे हैं, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं डरता हूं कि कृष्ण नाराज हो जाएंगे मेरे से, अगर मैं जो है आपकी रचना में दोष निकालूंगा तो कृष्ण नाराज हो जाएंगे। ठीक है, मूर्ख तो विष्णाय नमः कहता है, विद्वान विष्णवे नमः कहता है, किंतु भगवान दोनों के वचनों को समान भाव से ग्रहण करते हैं, बराबर फल प्राप्त होता है ना, क्योंकि कृष्णाय नमः होता है, कृष्ण के लिए हम नमस्कार करें, कृष्णाय नमः। अगर आपको कुछ प्रणाम मंत्र नहीं आता है और कृष्ण के मंदिर में आप प्रणाम करते हैं, तो हम लोग तो प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, अपने गुरु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो कृष्णाय नमः बोल दो, है ना। तो कृष्ण के लिए तो कृष्णाय नमः, विष्णु के लिए विष्णवे नमः, संस्कृत के नियम है, विष्णु के लिए विष्णाय नमः नहीं होता। लेकिन कोई मूर्ख है तो विष्णु को भी विष्णाय नमः कह देगा, है ना, तो उसमें भगवान नहीं मतलब दोष देखेंगे, भगवान मानेंगे कि हाँ इसने मुझे प्रणाम किया है, भगवान प्रसन्न होंगे। तो भगवान समान भाव से ग्रहण करते हैं। प्रभु बोले भक्त भाग्य कृष्ण रे वर्णन ये आते जे दोष देखे से ये पापी जन, भक्ते रे काव्यत्व जेते माते के नहे सर्वथा कृष्ण रे प्रीतता आते निश्चय, मूर्खे बोले विष्णाय विष्णावे बोले धीर दुई वाक्य परिग्रह करे कृष्ण वीर। तो विष्णु भगवान को प्रणाम करते समय मूर्ख व्यक्ति विष्णाय नमः कहता है और पंडित व्यक्ति कहता है विष्णवे नमः, किंतु पुण्य दोनों को समान होता है, क्योंकि भगवान भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करते हैं, वचन के शुद्ध अशुद्ध होने पर ध्यान नहीं देते। इसलोक क्या है, मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयोस्तु समं पुण्यम भावग्राही जनार्दन, है ना। तो श्लोक की जो अंतिम शब्द है ना, भावग्राही जनार्दना, ये बड़ा प्रसिद्ध है कि भावग्राही जन भगवान भाव ग्रहण करते हैं, भगवान नहीं देखते कि तुमने, क्योंकि निंदा भी करती हैं गोपियां, लेकिन उसमें उनका प्रेम छिपा हुआ है, तो भगवान उससे वेदों की स्तुति से ज्यादा उनको आनंद आता है उनकी निंदा सुन करके, जो गोपियां निंदा करती हैं या माता शोदा डांटती हैं ना, तो भगवान तो भाव ग्रहण करते हैं, है ना। तो भावग्राही जनार्दना, है ना, तो भगवान ने मना कर दिया, क्या कि मुझसे ये कार्य नहीं होगा, मेरी हिम्मत नहीं है कार्य करने की, है भगवान जो है ईश्वरपुरी को मना कर रहे हैं। अच्छा, तो महाप्रभु ने कहा प्रभु जो व्यक्ति भक्तवाणी और कृष्ण चरित्र में दोष देखता है वही दोष उसी में है। अगर भक्तों की वाणी में दोष देखा और कृष्ण के वर्णन में दोष देखा तो वो दोष आपके अंदर ही है, अगर आप ऐसे दोष देखते हैं, है ना। भक्तों के वर्णन मात्र से श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं, इसलिए आपका जो प्रेमय वर्णन है उसे देखने या संशोधन करने का कौन साहस कर सकता है। आपने जो वर्णन किया है साहस किसका है, किसमें सुधार करें या कुछ करें कि मैं ठीक करूंगा। भगवान भगवान डरते हैं, सिखा रहे हैं हम लोगों को, शिक्षा दे रहे हैं। तो श्री प्रभु के उत्तर को ईश्वरपुरी ने सुना, बहुत आनंदित हुई, पूरा शरीर अमृत से जैसे नहा गया। भगवान ने अपनी वाणी से वह पूरा शरीर है ना, भगवान की जो वाणी है वो एक प्रकार से वो भी एक गंगा नदी है, है? जैसे गीता भगवान की वाणी है, भगवान के चरणों से एक धारा निकली है और एक धारा भगवान के मुख से निकली है ना, तो वो भी जो है एक धारा है, उस धारा में स्नान किया ईश्वरपुरी ने, अमृत अमृत की धारा थी, भगवान के मुख से अमृत की धारा निकली, ईश्वरपुरी जो है नहा गए, पूरा शरीर जो है अमृत से उनका जो है नहा गया। ईश्वरपुरी हंसकर बोले, विश्वंभर इसमें तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, किंतु जहां इसमें कोई दोष हो देख करके मुझे बताओ। अच्छा ठीक है, तुम्हें सुधार नहीं करना है, काटा कुटी नहीं करना है, तो मुझे बताओ जो दोष हो वो मुझे बताओ। ईश्वरपुरी कहते हैं आपको कोई दोष नहीं रहेगा, मुझे बताओ दोष क्या है ना। सुनिया ईश्वर है पूरी प्रभु रे उत्तर, अमृत सिंचत हैल सर्व कलेवर, पुनः हसी बलीला तुम्हारे दोष नाई, अवश्य बलि व दोष था के जे ठाई। इस प्रकार महाप्रभु पुरी जी के साथ प्रतिदिन दो चार घड़ी के लिए जाकर विचार विमर्श किया करते थे। दो चार घड़ी कितना होता है, एक घड़ी 24 मिनट की है तो दो घड़ी कितना हुआ, 48 मिनट। सोचो भगवान 48 मिनट देते हैं, या चार घड़ी, कभी चार घड़ी भी, तो चार घड़ी का मतलब कितना, 96 यानी डेढ़ घंटा, घंटा डेढ़ घंटा का समय भगवान देते हैं ईश्वरपुरी, और साक्षात भगवान है ना, और अपने को प्रकट नहीं कर रहे हैं है ना। ईश्वरपुरी का जो क्या सौभाग्य है ना। अब एक दिन प्रभु इनकी कविता को सुनकर के हंस पड़े और बोले, यहाँ धातु की संगति नहीं बैठ रही है, है? प्रभु ने कहा, यह धातु आत्मा में पदी लगाना संगत नहीं है। इतना कहकर प्रभु अपने घर चले गए, धातु पर विचार कर रहे हैं है ना। ईश्वरपुरी भी शास्त्रों के पंडित थे, तो प्रभु ने घर में आकर उस धातु पर पुनः विचार किया और उस धातु को आत्मा में पदी रूप में स्थापन किया। दूसरे दिन गए तो फिर उसका जो है स्थापन किया कि जिस धातु को आपने परस्मैपदी में प्रयोग किया है वो आत्मनेपदी में जोड़ करके मैं लाया हूँ, इसमें इस प्रकार से मैंने कुछ अपनी तरफ से सुधारा है, मतलब आज्ञा का पालन किया बहुत विनम्रता पूर्वक कि इसमें जो है मतलब धातु की संगति वैसी नहीं हो रही है, तो मैंने मतलब ऐसा लगाया है, इस प्रकार से बनाया है, क्योंकि वो श्लोक की रचना है तो श्लोक फिर भी बन गया, तो मैंने श्लोक फिर भी बना दिया, तो भगवान ऐसा बोले है ना। प्रभु गेले से धातु करे न विचार, सिद्धांत करे न तई अशेष प्रकार, से धातु करे आत्म न पदी नाम, आर्यन प्रभु गेले करीला आख्यान। इतना विचार भगवान को थोड़ी करने की जरूरत पड़ती है, भगवान तो सृष्टि के पति हैं, वो तो बिना विचार किए कितने दोष निकाल देंगे, और किसी की हिम्मत नहीं है कि फिर मंडन करें, खंडन कर दिया किसी का तो कोई मंडन नहीं कर सकता है ना। लेकिन भगवान विचार कर रहे हैं, क्यों विचार कर रहे हैं, आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, तो विचार करते हैं, और फिर विनम्रतापूर्वक बोले कि मैंने इस प्रकार से कुछ इसको जोड़ा है, धातु को इस प्रकार से जोड़ा है। प्रभु द्वारा व्याख्या को सुनकर ईश्वरपुरी बड़े संतुष्ट हुए कि चलो विचार तो किया। फिर उसके बाद प्रभु ने अपने भक्त को विजयी बनाए रखने के लिए कभी कोई दोष नहीं निकाला। कभी दोष नहीं निकाला। अब वो जो थे केशव कश्मीरी ने गंगा जी की महिमा में 100 श्लोक बनाए, तो 64वें श्लोक में भगवान चैतन्य ने 5 दोष निकाले और 5 गुण भी निकाले, 5 गुण और 5 दोष निकाले है ना, उसमें भी गुण भी बताया, गुण भी है, 5 दोष भी निकाल दिए। और एक शब्द था भवानी भरता, तो भवानी भरता में क्या, भवानी भरता ये प्रयोग सही नहीं है, कि भवानी का मतलब क्या, भव की पत्नी हाँ, भगवान है शिव जी, तो शिव जी की पत्नी भगवान का शिव जी की पत्नी, फिर भरता यानी उसके पति, इसका क्या मतलब हुआ? शिव जी की पत्नी के पति, इसका तो कोई दूसरा पति है? तो भवानी भरता ये शब्द के प्रयोग में भगवान ने जो है दोष निकाल दिया कि इसमें तो दोष लग रहा है, लेकिन भक्त की वाणी में कभी नहीं। तो हाँ, अपने भक्त को विजयी बनाए रखते हैं भगवान, अपने भक्त को विजयी बनाए रखते हैं, हैं, कोई दोष नहीं निकाला, क्योंकि श्री भगवान सदा अपने भक्तों की विजय वृद्धि करते हैं, विजय बढ़ाते रहते हैं, और विजय भगवान अपने भक्तों को विजय देते रहते हैं हमेशा। व्याख्यान है सोनी है प्रभु पारा में संतोष, वृत्य जाए निमित्त न देन आर दोष, सर्व काल प्रभु बढ़ायन वृत्य जय एतान स्वभाव सकल वेद कहे। तो भगवान का ऐसा जो स्वभाव है ये समस्त वेदों ने बताया है, समस्त वेद यही बताते हैं कि भगवान का ऐसा स्वभाव है, अपने भक्तों को हमेशा ऊपर उठाते हैं, अपने से ऊपर उठाते हैं। तो इस प्रकार अनेक दिन श्री चैतन्य के साथ विद्या अध्ययन रस का आस्वादन करते रहे, ईश्वरपुरी जो है विद्या रस का आस्वादन कर, भगवान के साथ अगर विद्या रस का आस्वादन करें तो वो भी जो है कृष्ण कथा ही है, भगवान के साथ कोई भी चर्चा करो तो वो कृष्ण कथा ही है ना। अगर भगवान के बारे में कुछ अगर आप चर्चा नहीं करते तो फिर वो कृष्ण कथा नहीं होगी, या भगवान के साथ कोई भी बात होगी तो वो कृष्ण कथा है ना। तो अर्जुन जो है भगवान के साथ युद्ध की बात कर रहे हैं, भगवान अर्जुन से युद्ध की बात कर रहे हैं, युद्ध करो, तो ये कृष्ण कथा है। कृष्ण के साथ अगर आप कुछ बोलते हो और कृष्ण आपके साथ कुछ बोलते हैं तो वो कोई भी विषय हो वो क्या है? कृष्ण कथा है ना। तो विद्या रस का आस्वादन करते हैं, शब्द का प्रयोग ऐसा होना चाहिए, ऐसा धातु का प्रयोग होना है, इस प्रकार से वाक्य का प्रयोग होना है, ये चर्चा कर रहे हैं ना। तो उसका भी क्या है? रस, पूरा रस प्राप्त होता था श्री चैतन्य के साथ, इनको पूरा रस प्राप्त होता था। और ईश्वरपुरी भक्ति रस के आस्वादन के लिए सदा चंचल रहते थे, इसलिए एक स्थान पर टेक कर ना रहते थे, पृथ्वी को पवित्र करने के लिए नवद्वीप से अन्यत्र चले गए। अब चले गए, कई महीने तक रहे और फिर चले गए, ये भी जो है भगवान की इच्छा, भगवान का नियंत्रण, और वो नहीं जानते कहाँ जा रहे हैं लेकिन जा रहे हैं, और जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पवित्र कर रहे हैं, जिस स्थान में जाते हैं उसी स्थान को पवित्र करते हैं ईश्वरपुरी। वो थोड़ी जानते हैं कि वो पवित्र कर रहे हैं, लेकिन हर स्थान पवित्र हो रहा है उनके द्वारा। तो चले गए, हे मत कथोदिन विद्या रस संगे, विद्या रस रंगे आचिला ईश्वर पूरी गौर चंद्र संगे। तो जो व्यक्ति ईश्वरपुरी के पवित्र चरित्र को सुनेगा, सुन रहे आप लोग, तो कान खोल के सुनो। क्या? जो व्यक्ति श्री ईश्वरपुरी के इस पवित्र चरित्र को सुनेगा उसका श्री कृष्ण के चरण कमलों में सदा निवास होगा। इतनी जो है शक्ति है ना, भगवान के गुरु है ना, तो फिर भगवान विवश हैं अपने चरण कमल देने के लिए, विवश हैं ना, कि गुरु हैं ना, उसमें उनमें उसका मन सदा रमा रहेगा। किन में? भगवान के चरण कमलों में है ना, श्री कृष्ण के चरण कमलों में मन सदा रमा रहेगा, और क्या चाहिए? अगर ये हो जाए तो और क्या चाहिए? मन सदा रमा रहे है ना। माधविंद्रपुरी में जितना प्रेम था वो सब उन्होंने अंत समय ईश्वरपुरी को प्रदान किया था। ईश्वरपुरी ने क्या किया था? माधविंद्रपुरी के मलमूत्र भी साफ करते थे, माधविंद्रपुरी का मलमूत्र भी साफ करते थे, और कृष्ण के नाम सुनाते थे, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीला सुनाते थे। माधविंद्रपुरी को जो है हर प्रकार से संतुष्ट करते थे, हर प्रकार की सेवा करते थे, ऊंची नीची हर प्रकार की सेवा करते थे है ना। तो फिर किसको कृपा मिलेगी? अगर इनको नहीं मिलेगी तो किसको कृपा मिलेगी? माधविंद्रपुरी की है ना। तो अंत समय में ईश्वरपुरी को माध्यमपुरी ने अपना पूरा प्रेम प्रदान कर दिया था। अतः श्री गुरुदेव के द्वारा श्री कृष्ण कृपा को प्राप्त करके वे निर्विरोध होकर सदा भ्रमण करते रहते थे। जहां भी भ्रमण करें इनका कोई विरोध नहीं होता था, इन्हें कोई बाधा नहीं होती थी, है ना। कृष्ण रक्षा कर दे, ईश्वरपुरी की हमेशा रक्षा होती थी। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु जिनका जीवन धन है वे वृंदावन दास, उनके चरणों के सन्निधि में उनकी लीला गुण का गान करते हैं। जे सोना है ईश्वर पूरी रे पुण्य कथा, तारे वास है कृष्ण पाद पद्म यथा, जत प्रेम माधवेन्द्र पूरी रे शरीरे, संतोष दिले ने सब ईश्वर पूरी रे, पाई या गुरु रे प्रेम कृष्ण रे प्रसादे, भ्रमे न ईश्वर पूरी अति निर्विरोधे। तो इस तरह से हमने एक जो हिस्सा है इनकी कथा का वो सुना है। एक दूसरा हिस्सा इस चैतन्य भागवत में है जिस घटना में दोबारा मिलन हुआ, और कहाँ पर हुआ, गया में मिलन हुआ, जहाँ दीक्षा हुई चैतन्य महाप्रभु की, है ना। तो हमारे पास अब समय कितना है, 5 मिनट। तो 5 मिनट के लिए अब आप लोगों के साथ कुछ विचार कर सकते हैं, कोई चर्चा है, कोई प्रश्न है आप लोगों की ओर से, या मैं प्रश्न। हाँ प्रभु, हैंड माइक है, हैंड माइक। हाँ, ईश्वरपुरी का जो है स्वरूप ये पता नहीं चलता। हाँ, उसमें गौर गणोदेश दीपिका में कुछ लिखा है, श्रृंगार रूप है ये, तो उसमें विचार करना पड़ेगा इनका क्या है। लेकिन भगवान के श्रृंगार के का जो है कुछ इनका जो है मतलब रूप स्वरूप है इनका, भगवान के श्रृंगार में ही इनका कुछ स्वरूप है, तो ये बताया गया है, ठीक है ना। और कोई, मैं प्रश्न करूँ, ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जब ईश्वरपुरी आए तो उनको तो पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं, नवद्वीप में आए सबसे पहले, तो उनके पैर कहाँ गए, किसके घर में, कौन, अद्वैताचार्य, अद्वैताचार्य के घर में, अद्वैताचार्य के घर में गए, है ना। अद्वैताचार्य उस समय क्या कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, है ना। और ये फिर जब आए तो क्या इन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं आया हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, मेरा सम्मान करो, मुझे बैठने के लिए स्थान दो, क्या कुछ बोले, नहीं बोले। अपने को क्या समझते हैं, बहुत क्षुद्र, बहुत अधम, मैं कहाँ से आ गया यहाँ बाधा डालने के लिए, यहाँ तो भगवान की पूजा हो रही है, ये भाव था, मैं कहाँ से आ गया। ये अद्वैताचार्य वो तो अपने तेज को छिपा रहे हैं, अपने तेज को जानते नहीं, अपने तेज को मानते नहीं। ये अद्वैताचार्य जानते कितना तेज है इनका, वो पूजा कर रहे हैं, तो पूजा से उनको जो दृष्टि मिली है, उससे वो जान रहे हैं कि इनका तेज जो है इनके अंदर भगवान का तेज है, भगवान स्वयं जो है इनके शरीर के अंदर जो है भगवान प्रकट है। तो अद्वैताचार्य पूजा तो कर रहे हैं, इन क्या कर रहे हैं, बार बार इनकी तरफ देख रहे हैं, है ना। बातचीत नहीं हो रही, क्यों, कि पूजा का जो तरीका है वो क्या है, पूजा करना, है ना, बातचीत नहीं हो रही, लेकिन बार बार इनकी तरफ देख रहे हैं, है ना। और क्या सोच रहे हैं कि कब मेरी पूजा बंद हो और मैं इनसे बातचीत करूं। तो ऐसी भी पूजा हो सकती है, इस तरह से भी पूजा हो सकती है, और भगवान ऐसी भी पूजा स्वीकार करते हैं। अद्वैताचार्य पूजा जरूर कर रहे हैं, लेकिन पूजा के बीच में बात नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे इनसे बात करूं, इनका जो है सम्मान करूं और इनका परिचय प्राप्त करूं, इनकी संगति करूं। अद्वैताचार्य इस प्रकार से सोच रहे हैं, है ना। और जब इन्होंने पूछा अद्वैताचार्य ने कि आपका क्या परिचय है, क्योंकि वेशभूषा कैसी थी इनकी, मायावादी सन्यासी की तरह, है ना, तो कोई वैष्णव सन्यासी नहीं पहचान सकता था। जब पूछा तो ईश्वरपुरी ने अपना परिचय क्या दिया, क्षुद्र अधम, तुच्छ, बहुत तुच्छ हूं, बहुत अधम हूं। फिर क्यों आए, किस लिए आए, आपके चरणों के दर्शन करने के लिए आए, पवित्र होने के लिए, इस प्रकार से, है ना। लेकिन फिर कैसे पता चला कि महान वैष्णव है, कैसे पता चला, है, किसने गाया, मुकुंद दत्त ने गाया। मुकुंद दत्त ने जब गाया कृष्ण की लीला का जो है चरित्र गीत गाया है ना, तो क्या हो गए, मूर्छित हो गए। प्रेम की धारा, अश्रु की धारा बनने वाले बढ़ते जा रहे पता चल गया कि और फिर किसमें हो सकता है ऐसा प्रेम, किसमें हो सकता है ऐसा प्रेम, माधवीपुरी या उनके कृपा पात्र शिष्य, ये ईश्वरपुरी। माधवीपुरी तो पृथ्वी में नहीं रहे, सब लोग जानते हैं है? ईश्वरपुरी है लेकिन कहां पर है, उन दिनों तो कोई सूचना नहीं मिलती थी कि कहां पर है। आजकल तो सब पता चलता है फेसबुक से कि भाई हम कहां पर हैं, आप कहां हैं, ये हैं वो हैं, सब पता चलता है। उन दिनों तो कुछ भी नहीं था, कोई नहीं जानता था ईश्वरपुरी पूरी पृथ्वी में कहां पर हो सकते हैं, लेकिन पता चल गया ईश्वरपुरी। ठीक है, धन्यवाद। श्री ईश्वरपुरी तिरुभावतिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।